हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सुबह 4:30 बज रहे थे। आयुष्मान किचन में था जबकि प्रीति कमरे में सुकून की नींद ले रही थी। कुछ देर बाद वो किचन से निकलकर कमरे में पहुंचा और उसकी नज़र सीधे बिस्तर पर लेटी प्रीति की हथेलियों पर गई। मेहंदी अब सूख चुकी थी और रात को जो मेहंदी उसकी हथेली पर सजी थी अब वो बिस्तर की चादर पर बिखरी हुई थी। प्रीति की गोरी हथेली और बांह गहरे चॉकलेटी रंग में रंगी हुई थीं। इस मेहंदी ने उसके हाथों की सुंदरता को निखार दिया था। आयुष्मान उसकी मेहंदी देखकर मुस्कुराया, फिर प्रीति के पास आया। प्रीति उठो, सर्गी का वक्त हो गया है। आयुष्मान ने उसे उठाने की कोशिश की पर प्रीति गहरी नींद में थी। वो दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई थी। आयुष्मान ने 2-3 बार और उसे पुकारा पर प्रीति नहीं उठी। आखिर में आयुष्मान ने उसे जबरदस्ती उठाकर बिठाते हुए कहा, वेक अप प्रीति, वक्त निकल गया तो कुछ खा नहीं सकोगी। जल्दी उठो और फ्रेश हो जाओ, फिर सर्गी करनी है तुम्हें ताकि सारे दिन भूखे प्यासे रह सको। आयुष्मान ने प्रीति की नींद में खलल डाल दी थी पर वो अब भी उठना नहीं चाहती थी। उसने आयुष्मान के सीने में अपना सिर छुपा लिया और नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे नहीं करनी कोई सर्गी वर्गी, मुझे सोना है, आप सोने दीजिए मुझे। आयुष्मान उसे उठाने की कोशिश कर रहा था और प्रीति उसके सीने से लगकर वापस सो चुकी थी। कुछ पल तो आयुष्मान परेशान सा उसे देखता रहा, फिर उसने कुछ सोचते हुए प्रीति को अपनी बाहों में उठा लिया और बाथरूम की ओर कदम बढ़ा दिए। वॉश बेसिन के पास जाकर उसने प्रीति को नीचे उतारा तो वो नींद में लुढ़कने लगी। आयुष्मान ने तुरंत उसे संभाला और अपनी हथेली भिगाकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे डाले। प्रीति ने मिचमिचाते हुए अपनी आंखें हल्के से खोली और अपनी हथेली से अपने चेहरे को पोंछते हुए नाराज़गी से मुंह फुलाकर बोली, मुझे सोना है। आयुष्मान ने उसके हाथ को उसके चेहरे पर से हटा दिया और खुद उसके चेहरे को पोंछते हुए बोला, सो जाना पर अभी नहीं, आज तुम्हें सारा दिन भूखे प्यासे रहना है, इसलिए पहले नहा लो, आकर सर्गी कर लो, फिर वापस सो जाना। मुझे नहीं खानी सर्गी, प्रीति ने मुंह फुलाए हुए कहा। आयुष्मान ने अब जरा सख्ती दिखाई, अगर तुम्हें व्रत रखना है तो सर्गी खानी ही होगी, वरना जाओ सो जाओ और भूल जाओ कि आज व्रत रखोगी तुम। आयुष्मान की बात सुनकर प्रीति ने मुंह बिचका लिया। फिर उसने पानी से अपना मुंह धोने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी नज़र उसकी हथेलियों पर पड़ी। मेहंदी का चटक रंग देखते ही प्रीति का चेहरा खुशी से खेल उठा। उसने झट से पलटकर अपनी हथेली आयुष्मान के सामने कर दी और चहकते हुए बोली, देखिए मेरी मेहंदी का रंग कितना गहरा चढ़ा है, आखिर मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत जो करता हूँ, रंग तो गहरा चढ़ना ही था। आयुष्मान ने बिना एक पल गंवाए लबों पर कातिलाना मुस्कान सजाते हुए प्रीति को बड़े ही प्यार से निहारते हुए कहा। उसकी बात सुनकर प्रीति ने बुरा सा मुंह बनाया, बड़े आए मुझसे प्यार करने वाले, कल तो खुद मुझे लेक्चर सुना रहे थे और अब देखो कैसे मेरे मेहंदी के रंग का क्रेडिट लेने लगे, पर मैं आपको क्रेडिट नहीं देने वाली, आपके वजह से इसका रंग इतना गहरा नहीं है बल्कि मेरी मेहंदी हमेशा इतनी ही गहरी चढ़ती है। उसकी बात सुनकर और उसका चेहरा देखकर आयुष्मान हंस पड़ा। प्रीति नाक मुंह सिकोड़े उसे घूरने लगी। आयुष्मान ने उसके चेहरे के भाव देखे, फिर उसके गालों पर लहराती लटों को अपनी उंगली में उलझाकर उसे प्रीति के कान के पीछे खोंसते हुए मुस्कुराकर बोला, अच्छा अगर ऐसा है तो इतनी एक्साइटेड क्यों हुई तुम मेहंदी का गहरा रंग देखकर। इस दौरान आयुष्मान की ठंडी उंगलियों के स्पर्श ने प्रीति के गाल को छुआ और प्रीति उसके छुअन से सिहर उठी। सीने में मौजूद दिल जोरों से धड़क उठा, उसकी पलकें भारी होने लगीं और सांसें ऊपर नीचे होने लगीं। आयुष्मान के सवाल पर प्रीति ने कुछ कहना चाहा, पर उसके लब थरथरा कर रह गए, आवाज़ बाहर ही नहीं आ सकी। आयुष्मान ने जब उसकी अवस्था देखी तो उसकी मुस्कान गहरी हो गई। उसने अपना हाथ पीछे हटाते हुए मुस्कुराकर कहा, बाहर हूँ, जल्दी से नहाकर तैयार होकर आना। इतना कहकर आयुष्मान वहां से चला गया पर प्रीति अब भी वैसे ही खड़ी थी। कुछ पल वो इन्हीं नए नए एहसासों में उलझी रही, फिर उसने गहरी सांस छोड़ी और बाथरूम से बाहर आई। नींद के साथ साथ उसका चैन भी उड़ चुका था। उसने अपने कपड़े लिए और नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो आयुष्मान ड्राइंग रूम में नजर आया। उसे देखते ही प्रीति को बाथरूम में जो हुआ वो याद आ गया और एक बार फिर उसका दिल बेचैनी से जोरों से धड़क उठा। प्रीति ने हड़बड़ाहट में उस पर से निगाहें फेर लीं। प्रीति अब भी अपने इन अजीब से नए नए एहसासों में उलझी खड़ी थी जब आयुष्मान की नज़र उस पर पड़ी। प्रीति, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ और सरगी करो। प्रीति ने गहरी सांस छोड़ी और सिर हिलाते हुए आयुष्मान की तरफ बढ़ गई। आयुष्मान ने उसे सोफे पर बिठाया और एक शॉपर और खाने से सजी थाली उसके सामने रख दी। प्रीति ने थाली को देखा। ड्राई फ्रूट वाली सेवइयां, दो पराठे, साथ में पनीर की सब्जी जो देखने में टेस्टी लग रही थी। ग्लास में केसर दूध था। एक कटोरी में ड्राई फ्रूट्स, दूसरे में कटे हुए सेब रखे थे। साथ में दो मट्ठियाँ भी थीं, खीरा और केला भी था। प्रीति ने सरगी की थाली को देखा, फिर आंखें बड़ी बड़ी करके आयुष्मान को देखकर हैरानगी से बोली, इतना सब मेरे लिए है? हाँ, और तुम्हें सब खत्म करना है। बेचारी प्रीति था तो चेहरे का रंग ही उड़ गया ये सुनकर। उसने कुछ कहना चाहा, पर आयुष्मान की घूरती आंखें देखकर चुप हो गई। उसने एक बार फिर थाली को देखते हुए कहा, इतनी सुबह सुबह आप ये सब कहाँ से लाए? क्या मतलब कि कहाँ से लाया? बनाने वाली चीज़ मैंने बनाई है तुम्हारे लिए और बाकी खरीदी है। उसका जवाब सुनकर प्रीति की आंखें फटी की फटी रह गईं।